Okay. प्रिय भाई और बहनों, नमो बुधाय, जय भीम। So we've come to the last of our series of talks.
तो इस प्रवचन मालिका के आखिरी पड़ाव में हम लोग आ गए हैं।
And we've been looking at the mind of the Buddha as a mandala.
और हम बुद्ध के मन को जानने की कोशिश कर रहे थे मंडल के द्वारा।
That is a circle with a harmonious arrangement within it.
और हम देख रहे थे कि इसके बीच कितना गहरा सुसंवाद प्रस्थापित है मंडल के भीतर।
And this is a symbol of completeness and perfection.
और यह प्रतीक है पूर्णता का और आदर्श का।
So when we look at the mandala, we can see the complete mind of the Buddha.
और जब हम इस मंडल को देखते हैं, तो हम बुद्ध के मन को पूरी तरह देख सकते हैं।
We can see every aspect of the Buddha's mind laid out before us.
हर बुद्ध के आयाम को हम देख सकते हैं, जो हमारे लिए इसका संबंध है।
So we've seen there are four directions in the center.
तो हमने देखा कि इस परिघ में कैसे चार दिशाएं हैं।
So we've thereby looked at, examined, made contact with the four principal aspects of the Buddha's mind.
तो बुद्ध के मन के जो चार प्रमुख आयाम हैं, उन तत्वों को हमने ठीक से जानने की कोशिश की।
We experienced the Buddha as truth.
हमने बुद्ध को अनुभव किया सत्य, एक सत्य कहके।
When we came into the mandala from the east, we saw the Buddha of truth.
हमने जब मंडल में प्रवेश किया पूर्व दिशा से, तब हमने बुद्ध को पाया, यह एक सत्य है।
We saw him touching the earth, the Bhumisparsh Mudra.
हमने बुद्ध को देखा कि वे भूमिस्पर्श मुद्रा में है।
And we saw his mirror-like wisdom.
और हमने उनकी प्रज्ञा को देखा, जो एक यानी आईने के जैसी साफ है।
So whatever is there, he sees as it is.
तो बुद्ध देखते हैं चीजों को जैसे वे सही मायने में है।
Then we came to the southern quarter.
तो फिर हम दक्षिण उसके कोने में आए।
And we saw the Buddha of beauty.
और हमने देखा सुंदरता के बुद्ध।
The yellow Buddha.
पीले बुद्ध।
In the dana mudra.
उनकी मुद्रा जो थी वह दान मुद्रा थी।
All the wonderful qualities within him, he gives freely to all.
जो भी उनमें अप्रतिम जो गुण है, वह सब औरों को देते थे असीम तरीके से।
And his wisdom is the wisdom of equality.
और उनकी जो प्रज्ञा थी, यह समानता की प्रज्ञा थी, समता मूलक प्रज्ञा थी।
Makes no distinction between people.
क्योंकि वह लोगों में कोई भेद नहीं करते।
He sees everyone has the same potential for Buddhahood.
वह देखते हैं कि हर इंसान में सारी क्षमता है बुद्धत्व प्राप्ति की।
Then we went into the western quarter.
फिर हम पश्चिमी कोने में आए।
And we saw the red Buddha of love.
और हमने वहाँ देखा कि प्यार के वहाँ बुद्ध है।
And we saw him in dhyana mudra.
और हमने वहाँ बुद्ध को देखा, वे ध्यान अवस्था में, ध्यान मुद्रा में बैठे।
We encountered his discriminating wisdom.
और हमने इसको देखा कि उनकी जो भेद करने वाली जो प्रज्ञा है, अलग अलग समझने वाली, वह कैसी है।
He sees every single individual as they are, as the unique individual they are.
हर व्यक्ति को कैसे वह अपने आप में एक व्यक्ति विशेष है, इस तरीके से बुद्ध देखते हैं।
And his response is to them as individuals.
और वह देखते हैं हर व्यक्ति को एक विशेष प्रतिसाद देके।
Then yesterday we went to the northern quarter.
और कल हम उत्तरी भाग में थे, यानी उस कोने में थे मंडल के।
And there we saw the green Buddha of action.
और वहाँ हमने देखा कि कृतिशील हरे बुद्ध।
That is of compassionate action.
और वो जो बुद्ध है, वह करुणामय है, कृतिशील है।
And we saw him in his abhaya mudra.
और उनकी वहाँ जो मुद्रा थी, वह अभय मुद्रा थी।
Saying fear not.
और उन्होंने तब कहा कि डरिए नहीं, निर्भय रहिए।
And I realized I didn't actually mention his wisdom.
और मैंने फिर जाना कि शायद मैंने उनके प्रज्ञा के बारे में बात नहीं की।
I said what it meant, but I didn't actually name the wisdom.
मुझे लगा मैंने बताया, लेकिन वो शायद प्रज्ञा के प्रतिपेक्ष में नहीं था।
His wisdom is the action accomplishing wisdom.
तो
the action accomplishing.
तो वह देखते हैं कि वह कृतिशील है, वह अपने कार्य को पूरा करते हैं।
In other words, he can see what is necessary to be done spontaneously.
यानि उनकी प्रज्ञा यह है कि वह देख पाते हैं कि इनकी जरूरत क्या है, तुरंत वह यह पहचान पाते हैं।
In every situation he sees immediately directly what needs to be done to bring beings to perfection.
किसी भी परिस्थिति में उस इंसान की जरूरत देख के उनको पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए वह देख पाते हैं, उनकी जरूरतों को पहचान पाते हैं।
So the Buddha's mind is always aware of what is the creative option.
तो बुद्ध का मन जो है यह हमेशा ही सजग है जो भी पर्याय उनके सामने उपलब्ध होते हैं।
In every situation he's aware of how to take things forward to a new level.
हर परिस्थिति में वह तैयार रहते हैं कि एक नए स्तर पे इनका विकास कैसे हो, यह उनके पास कुशल होता है।
He doesn't have to work it out.
उनको उसके लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती।
He just sees, he acts.
वो केवल देखते हैं और उस पे वो कृति करते हैं, कार्य करते हैं।
So we've seen the Buddha of truth, the Buddha of beauty, the Buddha of love, the Buddha of action.
तो हमने देखा जो सत्य के बुद्ध है, सुंदर बुद्ध है और कृतिशील बुद्ध है और प्यार के बुद्ध है।
But they're not really four separate Buddhas at all.
लेकिन वैसे देखा जाए तो यह चार बुद्ध अलग अलग बुद्ध नहीं है।
All those four qualities are united.
यह चारों जो गुण है वह एक ही बुद्ध में समाये हुए है।
And the fifth Buddha in the center represents the unity of the other four.
और जो पांचवें बुद्ध है जो मंडल के केंद्र स्थान में है, इन सब का एक मिलाप है।
That's the significance of the center.
यही महत्व होता है किसी भी केंद्र स्थान का।
The center is where all the other elements unite.
केंद्र स्थान वह होता है जहाँ सभी तत्व एक दूसरे से मिलते हैं।
It's a bit like here at Bodhgaya.
जैसे मान लीजिए यह बोधगया अपने आप में स्थल है।
We know there are many, many temples, many, many viharas here in Bodhgaya.
हमें पता है कि बोधगया में बहुत सारे विहार हैं, अलग-अलग तरीके के स्तूप हैं।
And each of those temples, each of those viharas has its own particular approach to the Dhamma.
और हर विहार का या हर स्तूप का अपना अपना नजरिया है, तरीका है धम्मों को देखने का।
We have our approach here.
और हमारा भी एक तरीका है, नजरिया है धम्मों को देखने का।
They have another approach to the Japanese center over there.
Japanese केंद्र में अगर हम जाते हैं तो उनके अपने तरीके हैं।
The same, a different approach at the Bhutanese center.
वैसे ही भूटान का जो सेंटर है वहाँ पे है।
There are several Tibetan centers, each with its own approach.
और कितने तिब्बतन केंद्र हैं जिनके अपने-अपने नजरिए हैं धम्मों को देखने के।
There are Chinese, there are Thai, there are Burmese, and so on.
चाइनीज हो गए, ताइनी, थाई हो गए और बर्मा के हो गए वगैरह वगैरह।
But even though they're all different, well, they're all united.
भले ही ये लोग अलग-अलग प्रकार के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक है।
They're united at the Mahabodhi Temple.
वे सारे लोग एक ही जगह आते हैं महाबोधि विहार में।
The Mahabodhi Temple is like the center of the mandala of Bodhgaya.
ऐसा हम कह सकते हैं कि यह जो बोधगया का मंडल है, उसका वह केंद्र स्थान है।
Everybody goes from their own individual centers to the Mahabodhi Vihara.
अपने अपने केंद्रों से कहीं से भी वह आए, वह जाते हैं महाबोधि विहार में।
And when they're there, they all unite in worshipping the Buddha. In going for refuge to the Buddha, Dhamma, and Sangha.
जहाँ कहीं से भी वो आते हैं, वो वहाँ इकट्ठा होते हैं और बुद्ध, धम्म, संघ को ही शरणगमन करते हैं।
So the center of the mandala represents its unity.
तो मंडल का जो केंद्र है, यह एकता का प्रतीक है।
So the white Buddha who sits at the center of the mandala represents the unity. Of the mandala.
तो यह जो सफेद बुद्ध है, जो मंडल के केंद्र स्थान में है, इन सब का मिलाप के प्रतीक है।
That's also represented by his white color.
और यही उनके सफेद रंग का भी अर्थ है।
White is a combination of other colors.
क्योंकि सफेद जो है, ये अलग-अलग रंगों का एक मिलाप है।
I mentioned yesterday that if you shine a light, a white light through a prism, it breaks up into different colors.
कल मैंने इस बात को बताने की कोशिश की थी कि अगर प्रिज्म से हम एक किरण डालते हैं, तो वह कैसे सात रंगों में विभाजित होता है।
So apparently white is not really a separate color.
तो वैसे देखा जाए, तो सफेद अपने आप में कोई अलग रंग नहीं है।
It's a combination. Of a number of other colors.
तो यह अलग-अलग रंगों का एक मेल है।
So again, the symbol is of completeness, of everything being united.
तो यह एक प्रतीक है सभी चीजों को एक करने का या इकट्ठा लाने का.
And of course, this image of centrality is not just to do with bringing things together. The image of centrality.
तो जो केंद्र स्थान की जो प्रतिमा है, इसका यह अर्थ है कि अलग-अलग चीजों को इकट्ठा लाने का बताने के लिए.
The Buddha is central.
क्योंकि बुद्ध जो है वह केंद्र स्थान में है, केंद्रित है.
For us as Buddhists, the Buddha is the center of life.
क्योंकि बौद्ध होने के नाते बुद्ध हमारे जीवन के केंद्र स्थान है.
The Buddha is the central meaning of life.
क्योंकि बुद्ध हमारे जीवन का ही एक केंद्र अर्थ है.
For us as human beings, the attainment of Buddhahood is what makes our lives meaningful.
एक इंसान होने के नाते संबुद्धि की या बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए जो प्रयास है, यही हमारा जीवन अर्थपूर्ण करता है.
So for us, everything leads up to the Buddha.
तो हमारे लिए हर चीज बुद्धत्व के लिए जाती है.
Everything revolves around the Buddha.
और जो हमारे इर्द गिर्द जो चीजें है वह भी बुद्ध के एक केंद्र स्थान में है.
Again, that's represented by Buddhist tradition.
फिर से यह एक प्रतिनिधित्व के रूप में बताते हैं बौद्ध परंपरा में.
In the past, Buddhists used to believe that Bodh Gaya was the first place to appear when the universe crystallized.
तो बौद्ध परंपरा में ऐसा कहते हैं कि जब इस विश्व का निर्माण हुआ तो बुद्ध गया एक ऐसी जगह थी जो सबसे पहले खोजी गई या पाई गई.
We know this isn't literally true.
अब हम यह जानते हैं ये एक साहित्यिक तरीके से सच है.
They didn't have telescopes, they didn't have modern science.
अब उनके पास कोई टेलीस्कोप नहीं था या दूरबीन नहीं थी या कोई आधुनिक विज्ञान नहीं था.
But they believed that the universe was constantly coming into being and disappearing again, being destroyed again.
क्योंकि उन्होंने यही पाया कि विज्ञान ने यही पाया कि दुनिया हमेशा ही उत्पन्न हुई है और वह नष्ट हुई है.
And in fact, modern science says this too.
और मुझे लगता है आधुनिक विज्ञान यही बताता है.
But it's said that the universe slowly crystallizes. It slowly comes into being.
और लेकिन यह हमें ज्ञात होता है कि यह जो विश्व का जो निर्माण हुआ वह धीरे धीरे हुआ.
And after millions and millions of years, it burns up again.
और कई यानी करोड़ों करोड़ों साल के बाद यह फिर से गायब हो गया या नष्ट हो गया.
This is what Buddhist tradition teaches.
यही बौद्ध परंपरा हमें सिखाती है.
And it so happens that's very much what modern science teaches.
और यही हो रहा है जो आज हम आधुनिक विज्ञान में सीख रहे हैं.
But ancient Buddhists believed that when the universe began to reform, the first place to reform was the Vajrasana, where the Buddha gained enlightenment.
लेकिन प्राचीन बौद्ध परंपरा हमें यही बताती है कि जब इसका पुनर्निर्माण हुआ या विश्व का पुनर्निर्माण हुआ तो यह पहली जगह थी जहाँ वज्रासन है, बुद्ध जहाँ बैठे थे.
They believed that was the center of the universe.
वो ऐसा मानते हैं कि यही विश्व का केंद्र स्थान है.
And they believed that when the universe began to disappear, this was the last place to go.
और वह यह भी मानते हैं कि जब यह विश्व खत्म हो जाएगा तो यह सबसे आखिरी जगह होगी जो खत्म हो जाएगी.
That makes Buddha Gaya a very good place to be.
इसलिए शायद इस तरीके से भी बौद्ध गया में रहना लाभदायक है.
Of course, it's not literally true.
अब तार्किक या वास्तविक रूप से यह पूर्ण सत्य नहीं है.
But clearly it's their way of expressing the fact that where the Buddha gained enlightenment is the center of the universe.
लेकिन तथ्यों के संदर्भ के अनुसार जो विश्लेषण हम यहाँ देखते हैं तो वह यही मानते हैं कि जहाँ बुद्ध ने संबुद्धि की प्राप्ति की वह विश्व का केंद्र स्थान.
Because enlightenment is the most important value in the universe, this is the most important place in the universe.
यह इसलिए है कि संबोधि की या प्रज्ञा की या निर्वाण की प्राप्ति होना यह सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्व में और वो यहाँ हुई.
So again, this image of centrality applies to the place that enlightenment, that Buddhahood has in our lives, in the lives of humanity.
तो इसका अर्थ यही है कि अपने जीवन में संबोधि प्राप्ति का जो स्थान है वही हमारा केंद्र स्थान है और सबके जीवन का भी वह केंद्र स्थान है.
So the white Buddha at the center of the mandala holds a golden Dhamma chakra.
तो यह मंडल के केंद्र स्थान में जो बुद्ध है यह सोनेरी रंग का धम्म चक्र अपने हाथ में लिए हुए.
Often he's shown not holding the Dhamma chakra but turning it.
अक्सर यह चित्र में दिखाया नहीं होता लेकिन उनके मुद्राओं से यह प्रतीत होता है.
So that the mudra indicates he's holding the center and he's turning the wheel.
तो मुद्रा यही बताती है कि अपने मध्य में उन्होंने चक्र को पकड़ा है और उसको वो घुमा रहे हैं.
You see there, he's not got the wheel, but he's turning it with his hands.
तो आप देख पाते हैं ऐसी मुद्राओं में वहाँ चक्र नहीं दिखता लेकिन मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वो चक्र को गतिमान कर रहे हैं.
So yes, the golden Dhamma chakra is a very important symbol in Buddhism.
तो यह सुनहरा जो धम्म चक्र है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है बौद्ध धर्म में.
But it's an interesting symbol because nobody really has a fully satisfactory reason why that is so.
यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि यह समाधानकारी कैसा प्रतीक क्यों है.
Nobody really knows where the symbol comes from.
लोग सही मायने में जानते नहीं है कि यह प्रतीक कहाँ से आता है.
Some people say it's a solar symbol, a symbol of the sun.
कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह एक सूर्य का प्रतीक है.
It's like a disc of the sun.
वो ऐसा मानते हैं कि मान लीजिए यह सूर्य की कड़ी है.
And of course the sun is another image of centrality.
और निश्चित रूप से सूर्य भी जो है यह दूसरा एक प्रतीक है केंद्र स्थान होने का.
All the planets revolve around the sun.
सारे जो ग्रह है यह सूर्य के केंद्र स्थान में होकर ही घूमते हैं.
The sun is what gives us life.
क्योंकि सूर्य जो है यह हमें जीवन प्रदान करता है.
So maybe that's true, maybe it was a solar symbol.
शायद यह सच होगा इसलिए यह प्रतीक होगा.
It's also said, and this comes in the Pali Canon, that the wheel was an image of kingship.
तो पाली ग्रंथों में यह भी प्रतीत होता है कि यह एक राजा होने का भी प्रतीक है.
When a king had a wheel, this golden wheel, it was a symbol of his rule.
जब कोई भी राजा ऐसा सोनेरी चक्र लगाता था तो उसके सत्ता होने का वह प्रमाण था.
So you could say the Buddha is like a spiritual king.
तो ऐसा हम कह सकते हैं कि बुद्ध एक धम्म राजा है, आध्यात्मिक राजा है.
The wheel is also a symbol of teaching.
तो चक्र जो है यह इसका भी प्रतीक है जिसे मानने हम शिक्षा कह सकते.
When the Buddha turns the wheel, the Dhamma is transmitted into the world.
जब बुद्ध या धम्म चक्र को गतिमान करते हैं तो धम्म दुनिया में जाता है.
So that the teaching, the Buddha's teaching, brings order to the world.
तो बुद्ध की जो शिक्षा है यह एक सुव्यवस्थितता लाती है दुनिया में.
A king's function in the past was to order society.
राजाओं का यह एक कर्तव्य था इतिहास में हम देखते हैं कि समाज को व्यवस्थित रखने का.
You could say it's the function of government today.
या आज के परिपक्ष में हम कह सकते हैं कि आज जो सरकारों का जो कार्य है वह
इज टू कीप पीस, टू कीप ऑर्डर.
यह इससे संबंध है कि शांति प्रस्तावित हो, एक सुव्यवस्थितता बनी रहे.
द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी.
सरकार का यह काम है कि वह समृद्धि लाए.
इज टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल.
हर किसी के धन का वह ख्याल रखे.
एंड ट्रेडिशनली बुद्धिज्म सेज़ द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज टू लुक आफ्टर द मोरल एंड स्पिरिचुअल वेलफेयर ऑफ पीपल.
बौद्ध परंपराएं हमें यह बताती है कि समाज का नैतिक और आध्यात्मिक स्तर रखना यह सरकार का काम था.
सो द किंग ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ कैओस.
तो इस तरीके से जो अव्यवस्थित परिस्थितियां है राजा उसको व्यवस्थित करने की कोशिश करता है.
He keeps the moral law.
वह नैतिक नियमों को रखता है.
And this is the function of the Buddha.
और यही बुद्ध का कार्य है.
The Buddha brings the Dhamma.
क्योंकि बुद्ध धम्म को ले आते हैं.
The Buddha brings the Dhamma which tells us what is valuable and what is not valuable.
बुद्ध जिस धम्म को हमें लाते हैं या बताते हैं वह हमें बताता है कि मूल्य क्या है और मूल्यहीन क्या है.
The Dhamma tells us what is most important in life.
धम्म हमें यह बताता है कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है.
It tells us how we can live a good life.
वह हमें बताता है कि हम कैसा अच्छा जीवन जी सकते हैं.
It tells us how we can live at peace with each other.
वह यह बताता है कि हम एक दूसरे के साथ शांति के साथ कैसे रह सकते हैं.
It creates the Sangha.
यह संघ की निर्मिति करता है.
It creates a harmonious society.
यह सुसंवादित समाज निर्माण करता है.
Of course, this is why Dr. Babasaheb Ambedkar wanted India to regain the Dhamma.
इसलिए बाबा साहब यह चाहते थे कि इस भारतवर्ष को धम्म फिर से क्यों मिले.
If the Dhamma comes back to India, India has a new basis.
अगर धर्म भारत में दोबारा आ जाता है तो इसको एक नई बुनियाद मिलेगी.
Instead of being based on caste and so on,
इस तरीके से जाति और अन्य विभाजन के मुकाबले
इट्स बेस्ड ऑन द धम्म.
यह धम्म के ऊपर आधारित होगा.
फ्रॉम द धम्म कम्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी.
क्योंकि धम्म से ही समता, स्वतंत्रता और बंधुता आती है.
सो द धम्म इज लाइक द रूल ऑफ अ किंग.
तो ऐसा हम कह सकते हैं धम्म यह है किसी एक राजा का राज्य.
सो द बुद्धा ब्रॉट the Dhamma into the world.
इसलिए बुद्ध ने धम्म को इस संसार में लाया.
He brought the basis for a good society.
उन्होंने अच्छे समाज की बुनियाद लाई.
He challenged the old society.
उन्होंने पुरानी जो व्यवस्था थी उसको उन्होंने आह्वान किया.
And he brought a new society.
और उन्होंने एक नए समाज की स्थापना की.
There's a very very important place at the Mahabodhi temple that I want to tell you about.
एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो महाबोधि विहार के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा.
Of course, there's the Bodhi tree.
निश्चित रूप से बोधि वृक्ष तो है ही.
There's the Vajrasana.
वहाँ पे वज्रासन है.
Where the Buddha sat when he gained enlightenment.
जहाँ बुद्ध बैठे थे जब उन्होंने संबोधि की प्राप्ति की.
But there's another place that's very important to me and to Maitreya.
लेकिन वहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है जो मेरे लिए और मैत्रेय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.
Some of you may have seen that just as I'm about to go up the steps to go out of the Mahavihara, I bow before a pillar.
आपने देखा होगा जब मैं महाबोधि विहार से बाहर निकलता रहता हूँ तो वहाँ पे एक स्तंभ है जहाँ पे हम प्रणाम करते हैं.
One or two people have been a bit surprised because I just go down in front of this pillar.
लोगों को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि ये अचानक किसी स्तंभ को क्यों प्रणाम कर रहे हैं.
Well, when you know what happened there, I think you'll understand.
लेकिन शायद अगर आप जान जाएंगे कि वहाँ क्या हुआ तो आप समझ पाएंगे.
So the Buddha gained enlightenment under the Bodhi tree.
तो बुद्ध ने संबोधि की प्राप्ति की बोधि वृक्ष के तले.
And he spent 3 weeks in other places around the Bodhi tree.
और उन्होंने 3 सप्ताह जो थे वह दूसरे वृक्ष के तले बिताए.
And he spent the 4th week under a tree. Which is where that pillar now is. Was where that pillar now is.
अभी जो वहाँ स्तंभ है उस वहाँ पे वृक्ष था उसके तले बुद्ध ने 14 सप्ताह बिताए.
So the Buddha sat there under that tree.
तो उस वृक्ष के नीचे बुद्ध वहाँ बैठे हुए.
And he had his first meeting with a human being after his enlightenment.
संबोधि प्राप्ति के पश्चात यह उनका पहला मानवीय संबंध था.
And that meeting was very, very deeply important to us.
और यह जो मुलाकात है यह बहुत ही गहरी है हम सब के लिए.
A Brahmin priest came by.
एक ब्राह्मण जो सन्यासी थे वो वहाँ आए.
And he saw the Buddha sitting there.
और वहाँ बुद्ध को बैठे हुए उन्होंने देखा.
So he thought, well, what's he doing there?
अब उन्होंने सोचा कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं?
Why is he sitting there?
यहाँ क्यों ये बैठे हुए हैं?
So he went and asked the Buddha a sort of trick question.
और बुद्ध को उन्होंने एक थोड़ा सा अटपटा सा सवाल पूछने की कोशिश की.
He said, what makes a Brahmin?
उन्होंने उनको पूछा कि कौन सी चीज है जो इंसान को ब्राह्मण बनाती है.
In other words, what makes the best person?
दूसरे शब्दों में अगर इस समय कहूँ तो कौन सी चीज है जो इंसान को एक अच्छा इंसान बनाती है.
In other words, what are you doing sitting there when you weren't born a Brahmin?
और तब उन्होंने बुद्ध को पूछा कि आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं जब आप स्वयं ब्राह्मण परिवार में पैदा नहीं हुए.
So he challenges the Buddha with this question.
तो एक तरीके से हम देखते हैं यहाँ बुद्ध को उन्होंने एक आह्वान किया.
So the Buddha said, just I'm not going to quote him, but what he said means it's worth, not birth, that makes you the best human being.
अब मैं बुद्ध के शब्द यहाँ पूरे पूरे नहीं बताऊंगा लेकिन जो उन्होंने कहा कुछ ऐसा कहा कि जन्म नहीं कर्म ही आदमी को ब्राह्मण बनाता है.
It's your actions that make you into a good person.
आपकी कृतियाँ या आपके कर्म आपको अच्छा इंसान बनाते हैं.
You can't be born a Brahmin in this sense.
इस तरीके से आप ब्राह्मण के घर में पैदा होकर ही अच्छे इंसान नहीं होते.
You can't be born a Buddha.
और एक बुद्ध करके भी आप जन्म नहीं ले सकते.
You have to become one.
आपको बुद्ध बनना होता है.
So he made a direct challenge to the old system.
इस तरीके से वह जो एक व्यवस्था थी उसको उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी, आह्वान किया.
The first words that he spoke to another human being were a challenge to the old system.
तो पहला शब्द संबोधि के पश्चात अगर किसी व्यक्ति के साथ वह बोले वह एक चेतावनी थी.
Like a king, he announced a new order.
एक राजा के जैसे उन्होंने एक नई सुव्यवस्था को आमंत्रण दिया.
Of course, for many hundreds of years, that new order did rule in India.
तो ऐसा हम देखते हैं कि हजारों साल इस फिर नई व्यवस्था ने सत्ता संभाली.
From the time of Samrat Ashoka, for many years, India did have the Dhamma at its center.
और सम्राट अशोक से अगर आगे भी हम अगर इतिहास देखते हैं तो धर्म बहुत ही समृद्ध था.
But gradually the old order came back.
और निश्चित रूप से फिर से वह पुरानी व्यवस्था हावी हो गई.
The old order always comes back.
और पुरानी व्यवस्था हमेशा ही आती है.
It's always money, it's always birth that comes back.
हमेशा ही जो हमारा जन्म है या दूसरे विभाजन है दोबारा आ जाते हैं.
But then in 1956, Dr. Babasaheb Ambedkar set the wheel turning again.
तो 1956 में बाबा साहब ने फिर से वह जो धम्म था उसको गतिमान किया, धम्म चक्र किया.
He brought back the Buddha's rule.
उन्होंने बुद्ध का जो धम्म था उसको दोबारा वापस ले आए.
Of course, the work is not anywhere near complete yet.
अभी तक वह जो कार्य है वह पूरा नहीं हुआ है.
We still need to bring the Buddha back to the center of India.
अभी भी जरूरत है कि भारत के केंद्र स्थान में हमें बुद्ध को लाने की.
Well, not just to India, but to the whole world.
केवल भारत के लिए नहीं कि समूचे विश्व के लिए बुद्ध को केंद्र स्थान में लाने की आवश्यकता है.
When the Buddha teaches, he teaches Shila.
जब बुद्ध शिक्षा देते हैं तो शीलों की शिक्षा देते हैं.
When people practice Shila, they behave well towards each other.
जब लोग शीलों का आचरण करते हैं तो वह एक दूसरे से सुसंवाद करते हैं, सदाचार करते हैं.
They treat each other as free.
वह एक दूसरे के साथ मुक्त संवाद करते हैं.
They treat each other as equal.
एक दूसरे के साथ वह समानता का सुलूक करते हैं.
They treat each other with maitri.
वह एक दूसरे के साथ मैत्री का आचरण करते हैं.
So liberty, equality and fraternity come into being.
तो समता, स्वतंत्रता और बंधुता वह पुनर्निर्माण हो.
So the Buddha at the center is like a king.
तो इसलिए यह जो केंद्र के जो बुद्ध है यह किसी राजा के जैसे है.
The turning of the Dhamma chakra is like a king's rule.
यह धम्म का जो परिवर्तन है या प्रवर्तन है यह करना यानी मान लीजिए किसी राजा का फिर से कोई सत्ता.
Of course, it's not a rule of force or of violence.
अब निश्चित रूप से यह हिंसा का या शक्ति का राज्य नहीं है.
It's a rule of inspiration.
यह प्रेरणा का राज्य है.
It's a rule of faith.
यह श्रद्धा का राज्य है.
It's a rule of prajna.
यह प्रज्ञा का राज्य है.
So this is the significance of the golden Dhamma chakra wheel.
तो यह महत्व है इस सुनहरे चक्र का.
So the Buddha in this case is accompanied by some animals like in the others.
तो जैसे हमने अन्य बुद्धों के साथ किसी प्राणी का संबंध देखा यहाँ भी बुद्ध का किसी प्राणी से एक संबंध है.
His animal is a lion.
उनका जो यहाँ प्राणी है वह है सिंह या शेर.
This is obvious, isn't it?
यह बहुत स्वाभाविक है.
The lion is the king of animals.
क्योंकि शेर जो होता है सभी प्राणियों का राजा होता है.
The Buddha is often compared to a lion.
बुद्ध अक्सर उनकी जो तुलना है वह शेर के साथ की जाती है.
I saw a picture of a movie, a video of Baba Saheb recently.
अभी अभी मैंने बाबा साहब की जो छोटी सी जो वीडियो थी या जो चित्रण है वह देखा.
It was a very old film, very flickering and grey.
यह बहुत ही पुरानी फिल्म थी, बहुत उसमें यानी हलचल थी.
But when I saw it, I immediately thought it's like a lion.
जब मैंने उनको देखा तो मैंने तुरंत ही मेरे मन में यह भावना है कि यह शायद एक शेर पुरुष है.
When he started talking, it was like a lion roaring.
वह जब बोलते थे तो ऐसा लगता था मानो किसी शेर की वो दहाड़.
And yes, the Buddha was famous as a lion among men.
तो बुद्ध इसके लिए मशहूर है कि इंसानों में एक शेर के जैसे निर्भय वह माने जाते हैं.
So it's traditionally said that when the lion roars in the jungle, all other animals go silent.
ऐसा हम अक्सर सुनते हैं या मानते हैं कि जब कभी शेर जंगल में दहाड़ता है तो सभी प्राणी शांत हो जाते हैं.
The Dhamma is called often the lion's roar.
तो धम्म को अक्सर यह कहा जाता है कि शेर की दहाड़.
There's a very famous Buddhist work called the Lion's Roar of Queen Srimala.
lion's roar?
The lion's roar of Queen Srimala.
तो अक्सर यह कहा जाता है कि एक शेर की दहाड़ है एक श्रीमाला रानी के लिए.
And Queen Srimala was a famous Buddhist of the Indian Middle Ages.
तो मध्य युग के भारत में हम देखते हैं श्रीमाला यह बहुत ही सुंदर रानी थी.
And she not well, she was, maybe she was sundar, but she was also famous.
एक मशहूर सुंदर भी होगी वह एक मशहूर रानी थी.
And yes, she became very deeply realized.
और उसने बहुत ही गहरा कुछ चीजों को उन्हें समझी.
She saw the Dhamma truth directly.
और उन्होंने धम्म का प्रत्यक्ष दर्शन किया.
And she gave a great lion's roar.
और उन्होंने एक शेर की दहाड़ दी.
She spoke the Dhamma directly, loudly.
और उन्होंने धम्म को खुले मन से और प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त किया.
Nobody could answer her.
कोई भी उनको जवाब नहीं दे पा रहा था.
None of the monks could dispute with her.
कोई भी जो भिक्षु थे उनके साथ दुमत नहीं हो पा रहा था.
What she said was so deep, so true.
जो कुछ भी उन्होंने कहा यह गहरा था और सत्य था.
So the lion roars, everything else goes silent.
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब शेर दहाड़ता है तो हर चीज शांत होती है.
So then, what about the wisdom of the Buddha of the center?
तो अभी कौन सी प्रज्ञा है इस केंद्र स्थान में जो बुद्ध है उनकी?
This is a little bit more difficult to understand.
अब यह थोड़ा सा कठिन है समझने के लिए.
His wisdom is the wisdom of the Dharma Dhatu.
और इसे कहते हैं धम्म धातु की प्रज्ञा.
That means it's the wisdom that sees truth everywhere.
यह ऐसी प्रज्ञा है जो हर जगह केवल सत्य ही देखती है.
When the Buddha really, when one's really gained enlightenment fully, everything expresses the truth.
जब कोई संबोधि की प्राप्ति करता है तो हर चीज वह सत्य के रूप से ही देखता है.
Everywhere you look, you see the truth.
जहाँ कहीं भी आप देखते हैं तो केवल आप सत्य को देखते हैं.
You don't have to go somewhere special.
कहीं भी आपको एक विशेष जगह जाने की जरूरत नहीं.
You don't have to come to Bodhgaya.
आपको बोधगया भी आने की जरूरत नहीं.
You don't have to come to the Three Jewels Center.
कहीं त्रिरत्न केंद्र में आने की आवश्यकता नहीं.
Everywhere you are, whatever you're doing, the truth is there.
जहाँ कहीं भी आप है जैसे कैसे भी आप देख रहे हैं सत्य वहाँ है.
You cannot but see the truth just by looking.
आप केवल और केवल सत्य देखते हैं जब कभी भी आप देखते हैं.
So the ultimate truth of things is to be found in everything.
तो यह जो अप्रतिम सत्य है यह हर चीज में वह पाते हैं.
And the Buddha is the one who knows, the one who sees.
और बुद्ध एक वैसे इंसान है जो जानते हैं जो देखते हैं.
So he's free.
तो वह मुक्त है.
So he feels compassion to all.
तो वह मुक्ति का और करुणा का सबको आचरण देते हैं.
It's the Buddha's seeing of things as they are that makes him the Buddha.
बुद्ध को बुद्ध यही बना चीज बनाती है क्योंकि जो चीजें जैसी है वैसी ही वह देखते हैं.
So if we want to be like the Buddha, we have to develop prajna.
अगर हमें बुद्ध के जैसा बनना है तो हमें प्रज्ञा का विकास करना चाहिए.
That's what we've been trying to do on this retreat.
यही हम इस शिविर में पाने की कोशिश कर रहे हैं.
So how do we do it? How do we develop prajna?
कैसे हम प्रज्ञा का विकास करते हैं?
But traditionally it's said there are three stages.
पारंपरिक दृष्टिकोण से इसकी तीन अवस्थाएं बताते हैं.
First of all, you develop the wisdom of hearing.
सबसे पहली प्रज्ञा का हम विकास करते हैं जिसे हम सुनने की प्रज्ञा या श्रुतिमय प्रज्ञा कहते हैं.
Then you develop the wisdom of contemplation or reflection.
और दूसरी जो है वह चिंतामय प्रज्ञा है या चिंता से जो चिंतन से जो प्रज्ञा आती है वह प्रज्ञा.
And then you develop the wisdom of deep meditation.
और तीसरी जो प्रज्ञा है यह समाधि की प्रज्ञा है ध्यान प्रज्ञा है.
So let's just look at these three because we can be developing them in our own lives.
तो आइए इसे हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं ताकि अपने जीवन में हम इसका विकास कर पाए.
So first of all is the wisdom that comes from hearing.
तो सबसे पहली प्रज्ञा है जो सुनकर आती है.
This is known in Sanskrit as Shrutamayi Prajna.
और संस्कृत में इसे हम कहते हैं श्रुतमय प्रज्ञा.
Or Sutamayi Prajna in Pali.
या पाली में इसे श्रुतमय प्रज्ञा कहते हैं.
So Shruta or Sutta means hearing.
तो श्रुत या सुत का अर्थ जो है यह है सुनना.
Well, that's what you're doing now.
अब यही आप कर रहे हैं यहाँ बैठकर.
You're hearing the Dhamma at least as much as I can communicate it to you.
आप धम्म को सुन रहे हैं कम से कम जितना मैं आपको बता पा रहा हूँ.
I imagine that most of you have never heard these teachings before.
मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा इसके पहले.
So first of all, you need to listen to them.
तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं? उन्हें हम सुनते हैं.
Not just listen to them like listening to music or something like that.
हम ऐसा नहीं सुनते हैं मानो किसी हम संगीत को सुन रहे हैं.
It sort of really takes them in.
यह सही मायने में इसको हम अंदर लेते हैं अपने आप में इसको वो समाते हैं.
Absorb them into yourself.
इसका जो अर्थ है अपने आप में समाते हैं.
Traditionally you'd even learn them by heart.
और पारंपरिक दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो हम मन से इसे सुनते हैं दिल से सुनते हैं.
For instance there are many Tibetan monks and nuns here.
अब उदाहरण के लिए यहाँ बहुत सारे तिबेटन भिक्षु भिक्षुणियां हैं.
And they will be learning off pages and pages, books and books of the Buddha's words.
तो वह पन्ने और पन्ने और किताबें किताबें पढ़ते रहते हैं बुद्ध के जो शब्द हैं उनको पढ़ते रहते हैं.
They know by heart libraries of books.
वो दिल से उनको पूरी यानी जो ग्रंथालय है उसकी किताबें उन्हें ज्ञात होती है.
Well, to be truthful, we don't really need to know so much.
अब सत्य कहा जाए तो यह सब बातें हमको जानने की ही आवश्यकता ऐसा नहीं है.
It's very good to know that much because then you can deal with a wider range of people.
यह बहुत अच्छी बात है अगर ज्यादा ज्ञान होगा तो ज्यादा लोगों के साथ हम संवाद कर सकते हैं.
But we only need to hear a little of the Dhamma.
लेकिन हमें हमेशा ही सच्चे दिल से छोटे ही धम्म को सुनने की आवश्यकता होती है.
But what we hear, we need to know by heart.
तो कौन सी बात है जिसे हम दिल से सुनना चाहिए?
And we need to know it accurately.
हमें इसे स्पष्ट रूप से या सीधे रूप से सुनने की आवश्यकता है.
The Buddha left here from Bodh Gaya and went to Sarnath.
बुद्ध बोध गया से संबोधि प्राप्ति के पश्चात सारनाथ गए.
And at Sarnath he began his teaching.
और सारनाथ में उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी.
And that teaching has come down to us.
वही शिक्षा है जो आज हमें मिल रही है.
So he was giving us the instructions, you could say, the means of becoming like him.
तो वह अपने आप को वह साधन या संसाधन देने की कोशिश कर रहे थे जिसके द्वारा हम उनके जैसे बन सके.
So first of all, we need to know what he said.
तो सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि क्या उन्होंने कहा.
It's no good just going to the Buddha and bowing in front of him.
यह केवल पर्याप्त नहीं है कि बुद्ध के आगे हम जाए और उनके आगे केवल झुके.
That's very good, of course.
यह बहुत अच्छी बात है निश्चित रूप से.
But it's not enough.
लेकिन यह पर्याप्त नहीं.
There's no good bowing before the Buddha and then just walking away.
ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल बुद्ध के आगे झुके और फिर चल दिए.
You need to listen to what the Buddha has got to say.
हमें सुनने की आवश्यकता है क्या बुद्ध हमें कहना चाहते हैं.
Sometimes it's a bit as if we bow before the Buddha.
कभी कभी आप बुद्ध के आगे ऐसे प्रणाम करते हैं.
The Buddha starts to teach us.
बुद्ध हमारे गुरु है इसलिए.
And he said, sorry, please be quiet, I need to go now.
और हम ऐसा नहीं कहते कि बुद्ध आप शांत रहिए अभी मुझे जाना है.
We don't listen to him.
क्योंकि हम उनको सुनते नहीं है.
So we need to hear what he's got to say and know it clearly, accurately.
तो हमें इसे पूरी तरह जानने की आवश्यकता है कि उन्हें क्या कहना है और स्पष्ट रूप से समझना है कि वो क्या कहना चाहते हैं.
We don't need to be scholars. We don't need to have a PhD.
और बुद्ध की स्पष्टता जानने के लिए हमें विद्वान होने की आवश्यकता नहीं, हमें PhD लेने की आवश्यकता नहीं है.
Well, that's all right to have a PhD. But it's not necessary to gain enlightenment.
तो PhD करना अच्छी बात है लेकिन बुद्धत्व प्राप्ति के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है.
The Buddha wasn't Dr. Siddhartha Gautama.
क्योंकि बुद्ध जो थे वह डॉक्टर सिद्धार्थ गौतम नहीं थे.
In fact, some people say that the Buddha probably couldn't read.
कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि शायद बुद्ध को पढ़ना भी नहीं आता था.
Because most people couldn't read at that time.
क्योंकि उस वक्त बहुत सारे लोग पढ़ना नहीं जानते थे.
That doesn't mean he wasn't very wise and wasn't very learned, but Yes, you maybe couldn't read.
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि आप पढ़ नहीं सकते या लिख नहीं सकते. इसका मतलब आप सयाने नहीं है या होशियार नहीं है.
We just need to understand the Buddha's basic message.
हमें केवल बुद्ध के जो मूलभूत शिक्षाएं हैं उन्हें स्पष्ट रूप से समझना है.
And that is what Shrutamayi Prajna means.
और यही अर्थ है श्रुतमय प्रज्ञा का.
So for instance, the Buddha says everything is impermanent.
उदाहरण के लिए बुद्ध कहते हैं कि हर चीज अनित्य है.
Well, you really need to hear that.
यह हमें सही मायने में सुनने की आवश्यकता है.
You need to know that this is what the Buddha said.
यही हमें सुनने की आवश्यकता है कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं.
He said that everything arises in dependence on conditions.
बुद्ध कहते हैं कि हर चीज निर्माण होती है किसी कारणवश.
Nothing is swayambhu.
कोई भी बात स्वयंभू नहीं है.
Nothing arises without causes.
किसी भी कारण के बिना कोई भी चीज की उत्पत्ति नहीं हो सकती.
And everything that arises in dependence on causes will go again.
जो भी चीज इस कारण मीमांसा से उत्पन्न होती है वह उसी कारण मीमांसा से चली भी जाएगी.
So nothing lasts forever.
कोई भी चीज नित्य रूप से टिकी नहीं रहेगी.
Well, when the Buddha said that, he didn't say everything except Bhagavan.
बुद्ध जब हर चीज कहते हैं तो ऐसा नहीं कहते हैं कि ईश्वर के बगैर सभी चीजें अनित्य हैं.
He didn't say everything except आत्मा.
वो ऐसा नहीं कहते कि अनित्य का मतलब अनित्य का अर्थ आत्मा छोड़ के.
He said everything is impermanent, even the light.
वो कहते हैं हर चीज अनित्य है. मान लीजिए जैसी है बिजली.
You see, he turned it on and now it's gone.
अभी यह शुरू थी यह चली गई.
So everything is impermanent.
तो हर एक चीज अनित्य है.
Our retreat started.
अब हमारा शिविर शुरू हुआ.
Our retreat will end.
अब हमारा शिविर समाप्त भी होगा.
Everything comes and goes.
हर चीज आती है और चली जाती है.
Now, because everything is impermanent, it gives us a possibility.
क्योंकि हर चीज अनित्य है यह किसी संभावना को भी उत्पन्न करती है.
Just think, if things were permanent, well, they wouldn't change.
अगर हम ऐसा सोचने लग गए कि हर चीज नित्य है तो वहाँ बदल संभव ही नहीं है.
We'd be just stuck here. You would be stuck here listening to Subhuti forever.
आप यहाँ पूरी तरह बैठ जाएंगे और जिंदगी भर बस मुझे सुनते ही रहेंगे.
And I would be talking and talking and talking.
और मैं केवल कहता ही रहूंगा और कहता ही रहूंगा.
Maitreya might continue translating, I don't know.
Maitreya शायद भाषांतर कर पाए लेकिन मुझे पता नहीं.
But because things are impermanent, things can change.
क्योंकि अनित्यता है चीजें बदल सकती है यह इसकी संभावना है.
But because they can change, they can change for the better.
और क्योंकि चीजें बदल सकती है यह सकारात्मक रूप से भी बदल सकती है.
Well, this is something that Baba Sahib pointed out very strongly.
अब यही एक बात है जो बाबा साहब हमें बताने की बहुत यानी मजबूती से कोशिश कर रहे हैं.
You know, there's the idea that there's the eternal truth.
अब आपको पता है इसकी एक कल्पना है कि जो एक दैवी सत्य है.
So you know the eternal truth is embodied in the system of this society.
तो आपको पता है यह जो दैवी सत्य है यह पूरी तरह समाज में प्रस्तावित है.
बाबा साहब said no, it's not an eternal truth.
तो बाबा साहब कहते हैं कि यह कोई एक दैवी सत्य नहीं है.
It can change.
यह बदल सकता है.
India does not have to continue as a caste society.
जैसे कि यह जो जाति व्यवस्था है जरूरी नहीं है कि यह हमेशा के लिए निरंतर चलती रहे.
Everything can change.
हर चीज बदल सकती है.
It applies to you too.
यह हमारे साथ भी वैसा ही इसका संबंध है.
Because there's nothing permanent in you, you can change into the Buddha.
क्योंकि आप में ऐसी कोई भी बात नित्य फंसी हुई नहीं है आप हमेशा ही बुद्ध होने के लिए परिवर्तित हो सकते हैं.
So you could say change works in two different ways.
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बदल जो है यह दो तरीके का है.
Change works by just going round and round in the same old circle.
तो एक वह परिवर्तन है जो पुराने चक्र में वैसे ही घूमते रहता है.
It can go on in the way that India's gone on for thousands of years.
यह ऐसे ही चल सकता है जो हजारों साल से चलते आ रहा है.
Some people at the top, some people at the bottom.
कुछ लोग उच्च हो सकते हैं, कुछ लोग नीचे हो सकते हैं.
Everybody just saying, क्या कर सकता हूँ?
लोग हमेशा ऐसा कह सकते हैं कि क्या कर सकता हूँ.
This is the way it is.
अब यही ऐसा है.
What can I do?
मैं क्या कर सकता हूँ?
This is the permanent nature of things.
क्योंकि यही यानी चीजों का नित्य स्वभाव है.
But change can take place in another way too.
लेकिन परिवर्तन जो है यह दूसरे तरीके का भी हो सकता है.
It can take place in a spiral way.
यह ऐसा हम कह सकते हैं कि ऊर्ध्वगामी भी कठिन शब्द है. ऊर्ध्वगामी बदल हो सकता है. स्पाइरल रिंग जैसी जाती है ऊपर, ऐसा बदल.
Yeah, you got it?
Yeah.
Urdu shabda? Hindi shabda. Pakka Hindi shabda. So yes, a change can take place in a spiral like way.
तो ऐसा यह उर्दूगामी भी जो बदल है यह हो सकता है.
It can grow, it can develop.
यह विकसित हो सकता है, ऊपर जा सकता है.
So you go into the meditation session.
अब मान लीजिए आप ध्यान के सत्र में बैठे हैं.
And you feel very grumpy.
और आपको बहुत ही यानी अस्वस्थ महसूस हो रहा है.
That's grumpy, is it?
Yeah.
Everything's bad.
हम ऐसा सोचते हैं कि हर चीज नकारात्मक है.
Then you do the maitri bhavana.
फिर आप मैत्री भावना का ध्यान करते हैं.
And you change your way of looking at things.
और जैसे आप थे वो उसका नजरिया आप उस मैत्री भावना से बदलते हैं.
So there's change for the better, you could say.
तो ऐसा हम कह सकते हैं विधायक परिवर्तन के लिए हम बैठते हैं.
And the dhamma is the path of that progressive change.
और धम्म जो है यह ऐसे विकसित मार्ग का नींव है.
Change in yourself, change in the world around you.
आपके अंदर आपके भीतर परिवर्तन और आपके इर्द गिर्द जो दुनिया है उसमें परिवर्तन.
So we hear the Buddha's teaching.
तो हम बुद्ध की शिक्षाओं को ऐसे सुनते हैं.
We hear his teaching of impermanence.
यह अनित्यता की जो शिक्षा है वह हम सुनते हैं.
We hear his teaching of conditionality.
उनकी जो परिस्थिति सापेक्ष जो शिक्षा है उनको हम सुनते हैं.
We hear that we can create the conditions for our own growth.
हम ऐसा कह सकते हैं कि हम अपने लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं अपने आप के विकास के लिए.
So we hear it clearly.
तो हम इसे स्पष्टता से सुनते हैं.
We learn it.
हम इन्हें सीखते हैं.
We're able to see what the words mean.
हम इनको देखने के लिए काबिल हो जाते हैं कि इन शब्दों का अर्थ क्या है.
But it's not enough.
लेकिन यह पर्याप्त नहीं है.
It's not enough just to know the words.
केवल शब्दों को जानना ही पर्याप्त नहीं है.
Well, you need to think about them.
आपको इन शब्दों के बारे में सोचना है.
So that takes us on to the next level of wisdom.
तो यह हमें अग्नि प्रज्ञा की ओर ले जाता है.
That takes us to chintamayi prajna.
इसे हम कहते हैं चिंतामय प्रज्ञा.
So yes, we need to think. What is this actually true?
हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या सही मायने में यह सत्य है.
Is this something that is permanent?
क्या सही मायने में ऐसी कोई बात है जो नित्य है या नहीं है?
Can we see anything that is not subject to this law of impermanence?
क्या हम ऐसी कोई चीज को देख पाते हैं जिसका अनित्यता के नियम के साथ संबंध नहीं है?
We need to reflect on its significance for us.
तो इसका जो महत्व अपने आप के लिए जो है उसको हमें जानने की आवश्यकता है.
Buddhism is an intelligent religion.
बौद्ध धर्म जो है यह एक बुद्धिमान धर्म है.
Asks us to think.
यह हमें पूछता है या सोचने के लिए मजबूर करता है, सोचने के लिए लगाता है.
The Buddha said, what happens when a goldsmith is offered some gold to buy?
बुद्ध कहते हैं कि जब कोई सुनार किसी सोने को खरीदता है तो वह क्या करता है?
Does he just take your word for it?
क्या आप कहते हैं ये सोना है और वो उसे ले लेता है?
When you give it to him and you say this is 100% pure gold.
और आप उसको कहते हैं जो मेरे पास सोना है ये 100% शुद्ध सोना है.
Does he just say ठीक है and get some money out and give it to you?
क्या वो आपको कहता है कि ठीक है रख लेता है और आपको पैसे दे देता है?
Well, no, he doesn't.
निश्चित रूप से नहीं.
He tests it.
वह उसकी परीक्षा करता है.
I don't know how a goldsmith tests gold.
अब मुझे नहीं पता कि कैसा सोना सोने की परीक्षा करता है.
I think it involves melting it and seeing what happens.
मुझे लगता है कि शायद उसको वो पिघलाता है और वो उसकी परीक्षा करता है.
But anyway, a goldsmith knows how to test the purity of gold.
लेकिन सुनार जानता है कि उस सोने की शत प्रतिशत परीक्षा कैसे करे.
So the Buddha said, test my words just like the goldsmith tests gold.
तो बुद्ध यहाँ कहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही मेरे शब्दों की आप परीक्षा कीजिए जैसे सोनार सोने की परीक्षा करता है.
Otherwise, you know, somebody will give you some gold.
क्योंकि अक्सर ऐसा होगा कोई भी आदमी आपको आएगा और सोना दे देगा.
You'll give them some money.
और आप उसको कुछ पैसा दे देंगे.
And then you'll find it's just a piece of chocolate wrapped in gold paper.
और आप देखेंगे कि वो सोने के अलावा आपको चॉकलेट उसने उस पेपर में लपेट के दे दी.
Chocolate's good, but it's not gold.
चॉकलेट बहुत अच्छी है लेकिन वो सोना नहीं है.
It's not as valuable as gold.
क्योंकि उसका उतना मूल्य नहीं है जितना सोने का मूल्य.
So the Buddha said, think about what I say.
तो बुद्ध कहते हैं कि उसके बारे में सोचिए जो कुछ भी मैंने कहा.
Really see what it means, see whether you agree with it.
सही मायने में सोचिए कि क्या आप मैं जो कह रहा हूँ उसके साथ आप सहमत हैं.
Sometimes when you think about the Buddha's words, you realize what you don't really know what he was meaning.
बहुत बार हम बुद्ध के शब्दों से सहमति जताते हैं लेकिन हमें सही मायने में पता नहीं होता कि उसका वास्तविक अर्थ क्या है.
So ask, discuss.
तो पूछिए उसकी चर्चा कीजिए.
So that you're convinced fully.
ताकि आप पूरी तरह उसके साथ सहमत हो जाए.
You can't just say everything is impermanent.
आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ सभी चीजें अनित्य हैं.
Even though really deep down you don't believe everything's impermanent.
निश्चित रूप से अगर गहरे दिल के झरोके में अगर आप देखते हैं तो आप नहीं मानते कि सारी चीजें अनित्य हैं.
You need to convince your mind. That things really are impermanent.
आपको अपने मन को यह सहमति या समझने की जताने की आवश्यकता है कि सारी चीजें अनित्य हैं.
Then that will begin to affect your life.
वही तभी आपके जीवन में इसका परिणाम होना शुरू होगा.
It's the same with society.
यही समाज के साथ भी उतना इसका संबंध है.
You know, Baba Sahib pointed out that caste is just a mental construction.
बाबा साहब ने इस चीज को बहुत स्पष्टता से बताया है कि जात यह एक मानसिकता है.
And it's obvious. When you think about it, it's just a mental construction.
और यह स्वाभाविक है जब आप सोचते हैं तो यह एक मानसिक घड़न है.
It has no reality.
इसका कोई वास्तविक या तार्किक कोई ऐसा अर्थ नहीं है.
You can't measure it, you can't weigh it, you can't hit it.
आप इसको तौल नहीं सकते, आप इसको गिन नहीं सकते, इसका रंग आपको पता नहीं है.
It's just from the mind.
यह आपके मन की एक धारणा है.
But we hear those words.
अब इन शब्दों को हम सुनते हैं.
But we continue to act on that basis.
और हमेशा ही हम उसी बुनियाद पे चलने की कोशिश करते हैं.
So we need to take the Dhamma right inside us.
तो इस तरीके से धम्म को भी हमने सीधा अपने अंदर लेना है, मन में लेना है.
You really need to believe that you can change for the better.
आपको सही मायने में यह विश्वास हासिल करना है कि आप अच्छाई के लिए बदल सकते हैं.
You really need to be convinced that you can become like the Buddha.
आप सही मायने में इस बात से सहमत होने चाहिए कि आप बुद्ध जैसे परिवर्तित हो सकते हैं.
Buddhism is not a religion of words alone.
बौद्ध धर्म केवल शब्दों का धर्म नहीं है.
Words are very, very important.
शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है.
But we must plunge into the depths of the meaning of those words.
लेकिन इन शब्दों के अर्थों के गहराई में हमें जाना है.
And we must really understand what they mean.
और हमें इसको समझना है कि इसका सही अर्थ क्या है.
There's a very famous story about a great teacher at Nalanda.
एक बहुत ही सुंदर कहानी है एक महान गुरु जो नालंदा में रहते हैं.
Some of you, I think, will be going to Nalanda in the next few days.
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक दो दिन में शायद नालंदा जाने वाले हैं.
And this very great teacher, Naropa, was at Nalanda.
तो Naropa नाम के वहाँ एक बहुत महान गुरु रहते हैं.
And he was the greatest teacher that Nalanda had known.
तो नालंदा में माने जाने वाले सबसे मशहूर और महान गुरु में से वो एक थे.
He knew shelves and shelves and shelves of books.
उस ग्रंथालय में नालंदा के ग्रंथालय में जितनी भी किताबें थी वह सारी किताबों का ज्ञान उनके मन में था.
And he was always reading.
और वो हमेशा ही पढ़ते रहते थे.
Then what he read, he remembered.
जो कुछ भी वो पढ़ते थे वह उनको ज्ञात हो जाता था.
And so one day he was in his study late at night reading.
तो एक बार वह देर रात तक पढ़ रहे थे.
And an old woman came in.
और एक वृद्ध महिला वहाँ आई.
Well, first of all, he was surprised because he didn't know how she got there.
और सबसे पहले वह तो आश्चर्यचकित हो गई कि यह यहाँ कैसे आ गई.
So this old woman came in and she said to him, "What are you doing?"
और वह वृद्ध महिला आई और उस वृद्ध महिला ने उनको पूछा, "आप क्या कर रहे हैं?"
He said, "Well, I'm reading."
और उन्होंने कहा, "मैं पढ़ रहा हूँ."
And she said, "What are you reading?"
और उन्होंने कहा आप क्या पढ़ रहे हैं?
He said, well, I'm reading the Dhamma.
और उन्होंने कहा मैं धम्म पढ़ रहा हूँ.
She then said to him, do you understand the words or do you understand the meaning?
और उन्होंने उनको पूछा क्या आप शब्दों को समझ रहे हैं या उसके अर्थ को जान रहे हैं?
He was shocked.
और उनको यानी आश्चर्य हो गया.
He was such a great scholar.
इतने महान वे विद्वान थे.
He had the equivalent of many PhDs.
और वो बहुत सारे PhD के बराबर थे.
And he was the most learned man of his time.
और अपने समय के सबसे प्रशिक्षित वह व्यक्ति थे.
But when this woman asked the question, he realized he just knew the words.
और जब उस महिला ने उनको यह सवाल पूछा तब उन्होंने जाना कि शायद मैं केवल शब्द ही याद कर रहा हूँ.
He didn't know the meaning.
उनको उसका अर्थ पता नहीं.
And at once, he just left Nalanda.
उसी वक्त उन्होंने नालंदा को छोड़ दिया.
He went off into the forest and found himself a teacher.
और अपने आप को उन्होंने जंगल में चले गए और वो एकांतवास में चले गए.
And he became a great meditation master.
और ये बहुत महान ध्यान के गुरु बन गए.
So we must understand the meaning.
तो इस तरीके से शब्दों के अर्थों को हमें जानना है.
That's what Chintamayi Prajna means.
यही अर्थ है चिंतामय प्रज्ञा का.
We need to think about what we hear.
हम जिस जो सुनते हैं उसके बारे में हमें सोचना है.
But even that's not enough.
लेकिन यही पर्याप्त नहीं है.
You saw what happened with Naropa.
अब आपने देखा नरोपा के साथ क्या हुआ.
That old woman awoke him to the meaning of the words.
अब वो जो वृद्ध महिला थी उन्होंने शब्दों के अर्थों के बारे में उनको जगाया.
And the meaning of the words sent him off into the forest to meditate.
यह जो शब्दों का अर्थ था इसका परिणाम वह हुआ कि वो जंगल में चले गए.
So we need not just to reflect, we need to meditate.
हमें केवल चिंता या चिंतन करने की चिंतन ही पर्याप्त नहीं है, हमें ध्यान भी करने की आवश्यकता है.
We need to do bhavanamayi prajna.
हमें भावनामय प्रज्ञा का आचरण करने की आवश्यकता है.
So we get concentrated.
तो हम एकाग्र होते हैं.
Just as we've been doing with the mindfulness of breathing here.
जैसे हम आनापानसति ध्यान के साथ सुबह कर रहे हैं.
We get our minds very focused, very sharp, very subtle.
हम अपने मन को काफी स्थिर, सूक्ष्म और स्पष्ट कर रहे थे.
And then we reflect on the Dhamma.
और फिर हम धम्म का चिंतन कर रहे थे.
So we take the idea of impermanence.
तो हम एक अनित्यता के संदर्भ को समझने की कोशिश करते हैं.
But now our whole being is concentrated on those words.
तो अब हमारा जो संपूर्ण अस्तित्व है यह शब्दों पे केंद्रित है.
It's not just our intellects that are listening.
यह केवल एक बुद्धि वाली तरीके से सुनना नहीं है.
It's not just our ears that are listening.
यह केवल हमारे कान नहीं है जो सुन रहे हैं.
It's our hearts, you could say. It's even our blood.
ऐसा आप कह सकते हैं आपका दिल आपका लहू हर चीज सुन रहा है.
Everything is concentrated on that meaning.
हर जो यानी हर आपकी जो चीज है आपका संपूर्ण अस्तित्व उस अर्थ के ऊपर केंद्रित हो रहा है.
And when we listen in that way, the words really transform us.
इस तरीके से अगर हम सुनते हैं तो सही मायने में यह जो शब्द है हमें परिवर्तित करते हैं.
We see directly for ourselves the meaning of those words.
हमारे लिए इन शब्दों का प्रत्यक्ष अर्थ हम ढूंढते हैं.
The truth of those words is our realization, not the Buddha's words.
यह जो सत्य है या शब्दों का जो अर्थ है यह हमारी प्रतिभा या हमारा जानना है केवल बुद्ध के शब्द ही नहीं.
We have a direct experience of the Buddha's meaning.
बुद्ध के अर्थ का हमारा यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है.
And because we've seen impermanence directly for ourselves, we let go of all attachment.
हमने इस अनित्यता को अच्छी तरीके से हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, अनुभवते हैं और हम चीजों को फिर अनासक्ति से छोड़ते हैं.
Because everything is impermanent, there's nothing that we can cling to.
क्योंकि सारी चीजें अनित्य है हम किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रख सकते.
We usually build our happiness on the things around us.
हम अक्सर हमारे आनंद की उत्पत्ति करते हैं अपने इर्द गिर्द के दुनिया के आधार पर.
But a happiness built on impermanent things is going to lead to suffering.
क्योंकि जो आनंद है जो नित्य चीजों के ऊपर बुनियाद पर आधारित है वह हमें एक दिन दुख ही लाएगा.
So we need to see for ourselves the truth.
तो हमें अपने आप के लिए इस सत्य को जानना है.
And that truth sets us free.
और यह सत्य ही हमें मुक्त कराता है.
And we experience an unshakable happiness.
और जो अविचलित आनंद जो है उसका हम अनुभव लेते हैं.
The Buddha of the center sits in supreme understanding.
तो बुद्ध यह केंद्र स्थान में जब बैठते हैं तो इस उच्च समझ के साथ वह बैठते हैं.
And he experiences an unshakable happiness.
और वह अनुभव करते हैं इस अविचलित आनंद का.
At the same time he sees all other beings are caught up with clinging.
लेकिन उसी वक्त वह यह भी देखते हैं कि जो अन्य जो मानव है या जो सजीव है वह आसक्त है.
They don't understand the truth.
वह सत्य को देख नहीं पा रहे हैं.
They don't understand that everything's impermanent.
वह नहीं देख पा रहे हैं कि सारी चीजें अनित्य हैं.
And he feels compassion for them.
और उनके लिए उनके मन में करुणा की उत्पत्ति होती है.
So he turns the wheel of the dharma.
तो इसीलिए उस धम्म चक्र को वह परिवर्तन करते हैं.
He transmits the dharma to them.
और धम्म को उन तक वह पहुंचाते हैं.
And he shows them the way to peace, the way to happiness.
उनको वह मार्ग दिखाते हैं सुख का और शांति का.
So this is what we need to do.
यही हमें करने की आवश्यकता है.
We need to follow this path of wisdom.
यह प्रज्ञा का जो मार्ग है यह अनुसरण की हमें आवश्यकता है.
We need to hear and study the Dhamma day by day.
हर रोज हमें धम्म को सुनना है उसका अभ्यास करना है.
We need to study the Buddha's words.
बुद्ध के शब्दों का हमें अभ्यास करना है.
You can study the Buddha and his Dhamma, which has a very good compilation of the Buddha's words.
बहुत ही सुंदर ऐसी किताब है बुद्ध और उनका धम्म, आप उसे रोज पढ़ सकते हैं.
You need to hear and study daily.
Daily. आपको रोज सुनना है और उसे जानना है.
But that's not enough.
लेकिन यह पर्याप्त नहीं है.
You need to think about what you read.
आप जो पढ़ते हैं उसके बारे में आपको सोचना है.
You need to think about what you hear.
आपने जो सुना है उसके बारे में आपको सोचना है.
But even that's not enough.
लेकिन वही भी पर्याप्त नहीं है.
You need to meditate on it.
आपको उसके ऊपर ध्यान करना है.
You need to bring the full force of your concentrated attention to it.
आपकी जो एकाग्रता है उसका पूरा केंद्र स्थान उसके अर्थ पे आपको लगाना है.
So although we're finishing this retreat today, you can continue.
भले ही हम आज इस शिविर का समापन कर रहे हैं लेकिन आप इसको निरंतर रख सकते हैं.
You can continue to develop prajna.
आप प्रज्ञा का विकास करने के लिए हमेशा ही कार्यरत रह सकते हैं.
Of course, you need also to be practicing shila.
निश्चित रूप से इसके लिए आपको शीलों का आचरण करने की आवश्यकता है.
Without shila, you can't pay full attention.
शीलों के अलावा आप अपनी एकाग्रता नहीं विकसित कर सकते.
If you've not got shila, your mind is disturbed.
अगर आप शीलों का आचरण नहीं करते हैं तो आपका मन अस्वस्थ रहता है.
So you can't pay proper attention, you can't meditate.
तो आप पूरी तरह एकाग्र नहीं हो पाते, पूरी तरह आप ध्यान नहीं कर पाते.
And yes, you also need to meditate.
इसलिए आपको ध्यान की भी आवश्यकता है.
And then you can build up that concentration which enables you to see the truth.
इस तरीके से आप अपने एकाग्रता को केंद्रित कर सकते हैं जो सत्य को देखने के लायक होगा.
So even though our retreat is ending, our dharma life is not.
भले ही हमारा शिविर खत्म हो रहा है लेकिन हमारा जो धार्मिक जीवन है वह खत्म नहीं हो रहा है.
Wherever you go, whatever you do, you can continue to practice the dhamma.
जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, जहाँ कहीं भी आप रहेंगे, आप धम्म का आचरण कीजिए.
You can practice the path of shila samadhi prajna.
आप शील समाधि प्रज्ञा का आचरण कर सकते हैं.
You can follow the path of shrutamai prajna, chintamai prajna and bhavanamai prajna.
आप इन तीनों प्रज्ञा का आचरण कर सकते हैं, श्रुतमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञा, चिंतमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा.
Gradually you will enter the mandala.
धीरे धीरे आप इस मंडल में प्रवेश करेंगे.
And one day you will sit at the center of the mandala.
और एक दिन आप इस मंडल के केंद्र स्थान में भी बैठेंगे.
You will sit there like a king, like a queen.
आप एक राजा की तरह या रानी की तरह आप इस मंडल के केंद्र स्थान में बैठेंगे.
You will roar your lion's roar.
आप स्वयं अपनी यह सिंह गर्जना या शेर की दहाड़ खुद करेंगे.
You will see the truth everywhere and roar your lion's roar.
आप यह सत्य की गर्जना स्वयं करेंगे और जहां तहां आप इस सत्य को बताएंगे.
And in that way you'll lead all beings to harmony, to happiness, to peace.
इस तरीके से आप सभी सजीवों को सुसंवादि सुख में और शांति में ले आएंगे.
नमो बुद्धाय. जय भीम.